ولایت کے عمان سے جو سلسلہ بتائیے ہمارا چل رہا تھا، شاید آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہو، اور اس زمن میں مختلف جہتوں سے ہم نے اس موضوع ولایت کو سمجھنے اور اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی. اچھا، ایک بات میں تھوڑا سا مجھے افسوس رہے گا کہ مطلب آپ لوگوں کی طرف سے زیادہ سوالات میرے پاس نہیں آئے ہیں، میری طرف نہیں ہیں، کہ جو ہماری توقع تھی، کیونکہ یہ موضوع شاید ہمارے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہے کہ جب اس کے بارے میں بات ہو تو ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہونے چاہیے. تو ابھی تک ایسی چیز میں نے محسوس نہیں کی کہ باقاعدہ ایک فکر کے عنوان سے یہ ہمارے سامعین میں سے کوئی ایک فکر پیش کرے کہ ہاں، میں ولایت کے بارے میں میرا یہ تصور تھا، صحیح یا غلط ایک الگ بات، لیکن یہ ایک تھاٹ سامنے آئے کہ میں ولایت کو یہ سمجھتا تھا. ابھی تک ایسی چیز سامنے نہیں آئی، باہر امید کرتے ہیں کہ شاید آئندہ ہوا کریں. میں پچھلی دفعہ جس چیز کی بات کر رہا تھا اس کا تعلق تھا ولایت اجتماعی سے. ولایت اجتماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دین کو اور خدا کو اپنی زندگی میں قبول کر لیتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کی سرپرستی میں اپنی زندگی گزاروں اور ایسی زندگی بسر کروں کہ جس میں میری پیش قدمی خدا کی طرف ہو، تو ایسا صرف انفرادی طور سے ممکن نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اپنے ذاتی طور سے یہ چیز چاہوں اور ذاتی ہی اعتبار سے اس میں کامیابی ہوتا، بلکہ کیونکہ انسان جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سوشل اینیمل ہے یا گریڈیریس ہے، مختلف قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں کہ انسان اپنے معاشرے سے، اپنے ماحول سے، اپنے اطراف سے، اپنے خاندان سے کٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس وجہ سے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے، جس خامت کی جانب توجہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ جس ماحول اور معاشرے میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے وہ بھی دینی اور الہی ہو. کیونکہ اگر میں اور آپ اپنے طور سے اس بات کی خواہش کریں گے اور رکھیں گے کہ میں الہی انسان بن جاؤں، لیکن جس ماحول میں، جس گھر میں، جن لوگوں کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، ان کے رجحانات مخالف سمت کے ہوں گے، تو میرا اپنے اس مقصد کو، اپنے اس آبجیکٹو کو حاصل کر لینا تقریباً ناممکن ہو جائے. تو علاوہ اس کے کہ آپ دوسرے انسانوں کے لیے خیر خواہی چاہیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عنوان سے اس بات کو اور کہیں کہ ہمیں ایک اسلامی اور الہی معاشرے کے قیام کے لیے کوشش کرنا ہے، لیکن اس میں ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہماری خود اپنی فلاح کے لیے بات بہت ضروری ہے. کہ جیسا ہم اس وقت یہ محسوس کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارے اطراف اور ہمارے ارد گرد کے افراد یہ رجحان نہیں رکھتے، اس طرف توجہ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے خود ہمارے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہی ہمیں اکثر ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم یہی افراد ہیں کہ یہاں ہم پانچ وقت کی نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے توجہ سے، بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جب یہی ہم ہیں کہ جب ہم مشہد میں جاتے ہیں، جب ہم کنبھ میں جاتے ہیں، تو وہاں جا کے ایک دم کیفیت بدل جاتی ہے کہ یہاں عرصے سے جو ہے قرآن پڑھے جا رہے ہیں کیا سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب وہاں حرم کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہی چیز روشن ہو گئی کہ جو کچھ اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جس کے بارے میں اب تک ڈارکنیس میں تھے، وہ چیز اچانک روشن ہو گئی. تو یہ کس بات کا اثر ہے؟ وہ بھی اسی زمین کا ایک حصہ ہے، یہ بھی اسی زمین کا ایک ٹکڑا ہے. فرق کیا ہے؟ اس ماحول کا فرق ہے کہ جو ماحول ایک کریٹ کیا کچھ لوگوں کی قربانی سے، کچھ کی محنت سے، آئمہ کی برکتوں سے. اور یہ چیز خود میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام علی نقی علیہ السلام ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے جد امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ تم میرے لیے بھی جو وہاں پہنچنا امام حسین علیہ السلام کی قبر کے نزدیک، تو میرے لیے بھی دعا کرنا. وہ حیران ہوا کہ آپ امام معصوم ہو کے مجھ سے دعا کروا رہے ہیں اپنے لیے. تو امام نے فرمایا کہ خدا نے اس زمین پر کچھ ایسے مقامات رکھے ہیں اور قرار دیے ہیں کہ جہاں جو اس کی رحمت خصوصی کا مرکز ہے، جہاں پر پروردگار کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں اور عنایتیں نازل ہوتی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان خصوصی رحمت کے مقامات پر میرے لیے بھی دعا کی جائے. تو یہ اس کا ایک الگ اثر ہے. یعنی ایک چیز یہ کہ میرا خود ایک صحیح رستے پر چلنے کی کوشش کرنا وہ ایک چیز, لیکن ماحول اور معاشرے کا الہی ہونا اس کا ایک اور اثر ہے. کہ ورنہ اگر یہ چیز نہ ہو تو خود انسان کی ذاتی کوششوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور انسان زیادہ آگے نہیں جا سکتا, اور اگر انسان کو اس قسم کا سازگار ماحول میسر آ جائے تو پھر انسان بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے. کہ تو بنیادی طور پر جو حکومت اسلامی یا الہی معاشرہ یا ایسا معاشرہ کہ جہاں پر خدا کے اور دین کے قوانین نافذ اور ثابت ہوں, اس کی طرف رغبت جو دلائی گئی, اس کی اہمیت کی جو بات کی گئی, تو اس کا بنیادی فائدہ خود ہم سب کے لیے کہ اگر ہم ایک ایسے معاشرے کو قائم کریں گے اور ایسے معاشرے میں زندگی بسر کریں گے تو خود ہماری ترقی کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی اور ہم جن مقامات کو حاصل کر سکیں گے پھر ان کا معیار کافی بڑا ہو جائے گا. ورنہ یعنی کہ ایون پاکستان کے معاشرے کی آپ بات کریں, اس سے آگے ہٹ کے آپ مغربی اس میں چلے جائیں جہاں پر مسلمین آباد ہیں, میرا جو مشاہدہ ہے وہ یہ کہ ان افراد کا معیار ایون ہم سے بھی نیچے, کہ ہم جو اس برے حال میں ہیں ہم سے بھی نیچے. یعنی وہ صرف دین کے ظواہر پر عمل کر لینے کو اپنے لیے بہت بڑا کریڈٹ سمجھتے ہیں. دین کی گہرائیوں میں جانا تو دور کی بات ہے کہ اگر ہم نے پانچ وقت نماز پڑھ لی, اگر ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے, اگر ہم نے ارکان اسلام کو بجا لیا ہے تو ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. دین کے مزید معارف کو حاصل کرنے کی بات ان کے لیے بہت دور کی. تو یہ ایک اسلامی دینی اور الہی معاشرے کے قیام سے یہ فائدہ ہوتا ہے, اور اسی چیز کا نام کیا رکھا گیا ہے, ولایت اجتماعی, ولایت بین المؤمنین. اور وہ ہستی جو ایسے معاشرے پر حاکم ہو اس کے لیے لفظ آیا ہے ولایت فقیہ. اس کی امکانات کی میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا. جو آخر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ولایت کے حوالے سے, وہ ولایت کے موضوع کا سب سے مشکل پہلو. تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ کے ذہنوں میں سوالات آئیں تو ضرور پوچھیں, کیونکہ ہم نے یہ سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ سوالات کے لیے آپ کو آخر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جس وقت آپ کے ذہن میں سوال آئے آپ میری گفتگو کو روک کر وہ سوال کر سکتے ہیں.
خود تو وہ بڑھ سکتا ہے, سب کو نہیں بڑھا سکتا, تو کیا
نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے لیے جو سب سے پہلی چیز تھی جب آپ پر وہی نازل ہوئی پہلی بڑی, تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا, جناب خدیجہ کو اور امام علی کو ساتھ لیا جو آپ کے ساتھ رہتے تھے اس وقت, اور اس کے بعد خدا کی طرف سے حکم آیا کہ وانذر عشیرۃ الاقربین, کہ جو اپنے اقربا ہیں پھر آپ نے سب قریش کو بنی ہاشم کو جمع کر کے پھر وہ جو دعوت ذو الشیرۃ. تو یہ نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر خدا نخواستہ میرے قریبی انسان جو ہیں وہ صحیح بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو میں تو اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گا, جبکہ مجھے سمجھ میں آ گئی بات. لیکن اگر میرے خدا نہ کرتا قریبی افراد تیار نہیں ہے تو معاشرے کے اور افراد تو کچھ ملیں گے نا مجھے, گھر سے آپ کیجیے بالکل کیجیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہو گیا کہ گھر والے بات نہیں سن رہے, تو اب ایسا نہیں کہ آپ کسی اور سے کہیں گے نہیں,
ان سے تو کہتے ہیں.
تو اسی طریقے سے یعنی کیا ہوتا ہے کہ پورا ایک معاشرہ اسی انداز سے تشکیل پاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اگر اس طریقے سے اپنے آپ کو پھیلاتا رہے. میں اس کو یہی بات کہتا ہوں کہ یہ ایکسپینشن آف دا سیلف ہے,
تو اس کی ضرورت نہیں رہی کہ بچا گھر والے مارے نہ
مارے, تو اس میں جیسے پیغمبر کی بھی بات گھر والوں نے نہیں مانا, پیغمبر کے سگے چچا نے نہیں مانا, شدید دشمنی تھی, تو اس سے اثر فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اس میں اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ جو بات بھی ہم کہتے ہیں اس کا پہلے ایک نظریاتی اور فکری اعتبار سے ڈسکشن ہوتا ہے تاکہ وہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے یا اس کی معرفت حاصل ہو جائے, اور نظریاتی اور فکری اعتبار سے چیزوں کو سمجھنے کے بعد جب تک اسے عمل میں نہ لایا جائے, اس کو عملی نہ کیا جائے, اس وقت تک اس کا فائدہ نہیں کسی بھی چیز کا, کسی بھی نظریے کا. آپ چاہے ساری زندگی اس پہ بحث کرتے ہیں, ساری زندگی اس پہ مشکلاتیاں کرتے ہیں, لیکن جب تک وہ چیز عملی نہیں ہوگی. یہ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے آج کے مسلمان جو ہیں دنیا میں وہ بہت زیادہ دین کا بھی نام لیتے ہیں, خدا کا بھی نام لیتے ہیں, हम अगर अपने लोगों की बात करें तो वो इमाम हुसैन और इमाम अली और अहमद का भी नाम लेते हैं, लेकिन ये कि उसका कोई खातिरखा नतीजा हम नहीं दे पा रहे, खुद अपने लिए नहीं कर पा रहे, इस चीज का नतीजा खुद हमें हासिल नहीं हो पा रहा कि हमारी जिंदगियों में हम ये कहें कि सुकून और इत्मीनान आ गया हो, हमारी जिंदगियों से इज़्तिराब और बेचैनी का खात्मा हो गया हो, हमारे कंफ्यूजन दूर हो गए हों कुरान और हदीस के जरिए से। ऐसा नहीं, ऐसा हम खुद नहीं हासिल कर पाए। तो इसमें क्या करना चाहिए, यही चीज मैं बार बार आप लोगों की खिदमत में जो परमाशात अर्ज करता हूँ कि इस बारे में जब कट कीजिए कि न सिर्फ ये कि एक शय की मार्फत हासिल करें, न कि कुरान को समझें, बल्कि उसको अमली करें जिंदगी, ये बहुत जरूरी है।
मसला है एक मसला है, अभी आपने जैसे क्या हमले का सोचते हैं, जैसे एक मसला है सूद का, सूद का मसला ऐसा सवार है सब पर, जो बैंक का मुनाफा लेते हैं सब उसको हलाल करके लेते हैं, हर तो हराम हरा रहा है, और तमाम सूद का मुनाफा लेते हैं जिनकी करके हराने का चाहता है, और दिन बैंक बन गए और ऐसे बन गए, तो एक ऐसा मसला ये कि आदमी ऐसा गालिब आ गया है कि इससे वो निर्भर हो सिर्फ मौका नहीं, वो जरूर बैंक का मुनाफा जरूर लेता है, उससे नहीं बचता वो।
नहीं, इसमें कई जहतें इस कस्म के मसाइल की, जाहिर है कि उलमा ने भी इसके लिए राय को बताई, इसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें, फिर इस पर एक बात सवाल ये भी है कि जिसको आप सूद कहते हैं वो सूद है भी या नहीं, एक सवाल इस पर यह भी, और इस सवाल को शरीफ काफर सदर ने उठाया कि जिस सूद के बारे में कुरान करीम में इतने सख्त अल्फाज आए वो सूद है क्या, कि जिसको ये कहा गया कि यह अल्लाह और रसूल से जंग के बराबर है, तो ये बैंकों का जो इंटरेस्ट है कि जो बुनियादी तौर पर मनी, क्योंकि आज आपका जो सरमाया है वो करेंसी नोटों की शक्ल में, जेनस की शक्ल में, और करेंसी नोट्स जो हैं वो डी वैल्यू हो जाते हैं, यानी आपने 1,000 रुपये जमा किए, 1 साल 800 रुपये की कीमत रह गई उसकी, तो अगर आप उस पर यह शर्त लगाएं कि भाई मुझे 1,000 के 1,000 ही चाहिए, वही कीमत चाहिए, तो क्या ये भी सूद है, मतलब ये पूरी बहस बन जाती है कि आप कह रहे हैं कि मैंने 10,000 1,00,000 रुपए बैंक में रखे और 1 साल बाद उसकी कीमत 90,000 हो गई, तो मैं क्यों ये 10,000 में नुकसान उठा, बैंक को चाहिए कि मेरी मालियत मुझे वापस करे, तो क्या ये भी सूद है। यानी इस किस्म के भी मैं कह रहा हूँ कि अगर प्योरली इल्मी बहस चली जाती है कि जो शायद मैं बात कर सकूँ उस पर बहुत ज्यादा, और अभी मौका भी नहीं, लेकिन बात इसमें दो किस्म की है जो हम कहते रहते हैं कि एक ही है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं हम जैसे कि जो जब कभी दीन की वजह से किसी मुश्किल मोड़ पर आते हैं तो वहां अपने लिए कुछ मसलहत वगैरह जो वो चीजें लेके एक बाईपास निकाल के उसी रास्ते पे चले जाते हैं, ऐसे घूमते हैं और वापस उसी ट्रैक पे जाते हैं, ठीक है। और कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जो इस कदर इस्तकामत का मुजाहरा करते हैं कि उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। अच्छा, ये इज्तिमाई मसाइल, फिर हम लौट के अपने उसी नुक्ते उंगला पे आ जाते हैं कि इज्तिमाई मसाइल बगैर हुकूमत इस्लामी कायम हुए हल नहीं हो सकते, यानी ये कभी भी हल नहीं होंगे। जब तक हुकूमत इस्लामी कायम नहीं होगी, जब तक विलायत फकीर का निजाम ना कुछ नहीं होगा, ये मसाइल हल नहीं होंगे।
गुजारिश ये भी, क्या कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है जो ऐसे लोगों के लिए हो जो हुकूमत इस्लामी में नहीं रह रहे, क्योंकि जाहिर है दुनिया में हुकूमत इस्लामी हिजरा कायम है और पूरी दुनिया उससे महरूम है, तो क्या कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट है जो ऐसे मुसलमानों या मोमिनीन के लिए हो जो कि उस हुकूमत
के मौजूद है, यानी कि वो उलमा ने बैन किए, खासतौर से कि वो अफराद जो वेस्टर्न कंट्रीज में है, यानी इस मुल्क के लिए तो ये बात आमतौर से तसव्वुर नहीं की जाती कि हुकूमत गैर इस्लामी है पाकिस्तान के बारे में, लेकिन ये कि वो अफराद खासतौर से कि जो मगरबी ममालिक में, उनके लिए तो बातें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों से कैसे बचा जाए, किस तरीके से रहा जाए, वो मौजूद है। लेकिन बात वही है कि अगर आप बिल्कुल इंसाफ वाली बात से नजर से देखें तो वो चीज़ें भी बेसिकली कंप्रोमाइज हैं, और कंप्रोमाइज के नतीजे में इंसान को नुकसान जरूर होता है, ये बात है। अरे ठीक है कि हम उस एतबार से तो शायद बच जाएं कि खुदा हमें अजाब ना करे या आखिरत के सजा से बच जाएं, लेकिन मसला यहाँ पे सजा से बचने का नहीं, मसला दीन के हकीकी फवायद को हासिल करने का है।
तो ये दो अलग बातें आ गई। एक तो ये कि हमें हम जानना में ना जाए, खुदा के गजब से बच जाए, गुनाह बच जाएंगे, लेकिन क्या इस तरीके से दीन के कमा को फवायद आपको हासिल हो जाएंगे वो नहीं होंगे। ये दूसरा वो नुकसान रहेगा अपनी जगह पर, वो फायदा उसी वक्त नसीब होगा कि जो हमने सूरह मायदा की आयत में पढ़ा था कि जब तक अल्लाह और रसूल और अइमा की विलायत के जरिए सारे नहीं आ जाएंगे, जब तक इन विलायतों के जरिए से हिजबुल्लाह नहीं बना लेंगे तब तक वो फायदा हासिल नहीं होगा। वो चीज अपनी जगह पर है। और जैसे मैंने आपके लिए वो खुतबा खासिया पढ़ के सुनाया था कि उसके लिए फिर बेइंतहा कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। कि अली अलैहिस्सलाम ने दो चीजें बयान की थी कि मेरी मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत में अजियतों पर सब्र करना और इस खौफ से कि खुदा मुझसे नाराज ना हो जाए खुदा की राह से इंकराफ ना करना। बहुत अहम दो जुमले हैं। इस वजह से कम्प्रोमाइजेस को कबूल नहीं कर रहे। जैसे एक चीज है उस पर गौर कीजिएगा कि खुदा ने कहा कि हमने बनी इसराइल को आलमीन पर फजीलत दी, तो ये बहुत बड़ा उनके क्रेडिट था कि इतनी उन्होंने फिरौन और उसके हवालियों के हाथ से तकलीफें बर्दाश्त की लेकिन बनी इसराइल के लोग टूट के फिरौन के इसमें तरफ शामिल नहीं हुए। ऐसा नहीं किया उन्होंने मूसा के साथ कि इतनी मूसा से शिकायतें करते रहे। सूरह आराफ में क्या मूसा हम तो तुम्हारे आने से पहले भी कट रहे थे, तुम्हारे आने के बाद भी कोई हालत में तब्दीली नहीं आई। ये जरूर था हमसे हजरत मूसा, लेकिन ये नहीं किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ के उधर चले गए। जो मुसलमानों ने इमाम अली के साथ किया, जो मुसलमानों ने इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ किया, जो था इधर उधर से पैसे की लालच आई, उधर से खौफ आया, जनाब मुस्लिम के पास जोहर और असर में 17,000 थे और ईशा की नमाज में एक भी नहीं था। ये वाला काम नहीं किया होगा, ये क्रेडिट आपको बाहर हाथ देना पड़ेगा। और इसी वजह से जो खुदा ने कहा कि हमने बनी इसराइल को आलमीन पर फजीलत दी और इस खुतबे में नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तारीफ बयान की, ये क्रेडिट जा रहा है कि ये दो चीजें जब तक नहीं होंगी कि खुदा की राह में अजियतों पर, खुदा की मोहब्बत में अजियतों पर सब्र और इस ख्याल से कि कहीं खुदा हमसे नाराज ना हो जाए राह खुदा से इंकराफ ना करना, ये सिफत अभी हमें नहीं। हम बहुत जल्दी मसलहतों का शिकार हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी कंप्रोमाइज करने पर आ जाते हैं। इवन हम जाती एतबार से भी अपने आप पर इतना दबाव दबाव डालने के लिए तैयार नहीं होते कि हम जाती एतबार से ही पड़ाव वाले बन जाए, इसके लिए भी तैयार नहीं होते। तो मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले दो तीन फरमाइशा आपकी खिदमत में करूं कि जो अमली शायद माशरती एतबार से कुछ चीजें फायदेमंद हो हमारे लिए जाती एतबार से फायदेमंद हो। पहली फरमाइश मेरी यह है कि कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल में है कि वह कुरान अल फज्र इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, कि फजर के वक्त कुरान से राबता रखना, कुरान की तिलावत करना, कुरान में गौर फिक्र करना, इसकी बाकायदा इस पर नजर रखी जाती है, ये मशहूद है। यानी कोई है खुदा की जानिब से जो इस पर गवाह है। इस चीज को हत्तल इम्कान अपनी जिंदगियों में शामिल कीजिए और कभी तर्क न कीजिए। फजर की नमाज कभी ना छोड़ें और इसके आप इंशाल्लाह इसकी पाबंदी करेंगे और यकीन करते ही होंगे तो इसके बेहतरीन फवायद आपको हासिल होंगे अपनी पूरी जिंदगी में पूरे नहीं। और कुरान यानी फजर की सिर्फ नमाज नहीं बल्कि फजर की नमाज के साथ कुछ ना कुछ 10-15-20 आयतें कुरान करीम की तिलावत करके उनमें गौर फिक्र फरमाएं और जो समझें उसको लिख लिया करें और बाद में किसी से उसको डिस्कस भी करें, कंफर्म भी करें कि जो आप समझ रहे हैं वो दुरुस्त समझ रहे हैं या नहीं। एक ये चीज। दूसरी ये है कि अपनी जिंदगी के अंदर जितने भी फैसले करें वो जज्बातियत और असलियत की बुनियाद पर ना करें बल्कि हमेशा सही और गलत की बुनियाद पर करें। सही और गलत के लिए आपको बहुत ज्यादा लामा बनने की जरूरत नहीं है। सही और गलत का मेयार खुदा ने हर इंसान के नफ्स के अंदर डाल दिया। यानी हर इंसान अगर असलियत के जरासीम से पाक हो तो उसकी फितरत और अकल उससे सही की तरफ ही ले जाती है। यानी बाय डिफॉल्ट खुदा की कायम करदा फितरत के मुताबिक इंसान की डायरेक्शन सही है कि हम खुद उस पर अपने नफ्स पर मुख्तलिफ किस्म की चीजों को आरिज करते हैं और उस दबाव के तहत उसको गलत सिंह में लगे देते हैं। और जो चीज सबसे ज्यादा हमारे नफ्स को गलत सिंह में ले जाने वाली होती है वो असलियत और जज्बातियत, इमोशनलिज्म। इमोशंस है या गुरुबंदी है कि अपनी जिंदगी प्रैक्टिस करें बाकायदा इस चीज की तरबियत करें अपनी कि जब भी जिंदगी में फैसला करें तो इन दो चीजों की बुनियाद पर फैसला ना हो बल्कि सही और गलत जो आपके जहन में है सही और गलत उसके मुताबिक फैसला करें। ठीक। और तीसरी बात यह कि अपने आप को एक न्यूक्लियस बनाते हुए अपने गिर्द अपने अतराफियान में अपने अकरबा में अपने दोस्तों में जहां कहीं भी आपको मजबूर और महरूम अफराद नजर आए उनकी जाहिरी और बातली तरबियत के अतबार से कोशिश की। इस हल्के के लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो लेकिन हर इंसान ये सोचेगा मैं पूरा मुल्क सुधार दूंगा मैं पूरा शहर ये नहीं सिर्फ अपने अकरबा सिर्फ अपने घर वाले अपने रिश्तेदार अपने दोस्त। और इसमें भी जो खसूसी फरमाइश है वो यतीमों और बेवाओं के हवाले से कि यतीम की तालीम के हवाले से जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर कीजिए क्योंकि अगर आप एक इंसान जो एक बच्चा है जो बेचारा वैसे ही बगैर सरपरस्त हो चुका है अगर आपने उसको छोड़ दिया या हमने उसको छोड़ दिया कि जो हम सही और गलत और चीजों को समझने वाले हैं तो यकीनन ऐसे ही अफराद ऐसे ही बच्चे गलत राहों पर पड़ते हैं। और आपको पता है कि कितने लोग इस माशरे में हैं कि जो किस किस्म के लोगों का बच्चों का महरूम अफराद का शिकार करने वाले हैं। जितने आपको ये सारे दहशत गर्दी के मसाइल और बुराई और खराबी के मसाइल क्या है वही महरूम तबका कि जिस महरूम तबके को उन शैतानों ने उठा लिया और अपने मजमू मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से हमारे माशरे का ये मैं माजना चाहते हुए मसला जो खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा मसला उन बेवा खवातीन का है कि जो अपने शौहरों से महरूम हो गई इसी वजह से कि उनको अगर आपने बगैर सरपरस्ती छोड़ दिया तो आप यकीन करें कि उनके पास दो ही रस्ते बचते हैं या खुदकुशी या बुराई। इस चीज को अगर हम कुछ करना ही चाहते हैं कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो इन दो तीन चीजों से करा दी और इंसान नेकी उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसके कल्ब में ताकत और कुव्वत ना हो नेकी करने की। ये भी एक बहुत अहम नुकता है कि इसी वजह से हम बगैर ये अपने आप को ज़ईफ और कमजोर रखते हुए ईमानी और इरफानी मारिफत के लिहाज से जब हम कमजोर होते हैं तो हम कोई अच्छा काम कर भी नहीं सकते। यानी बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे जिस्मानी तौर पर एक शख्स कमजोर है इसमें ताकत ही नहीं है आप उससे क्या तलाब को बिठा दीजिए कैसे उठाएगा। तो जिस तरीके से आपको जाहिरी एतबार से अमल करने के लिए कुव्वत चाहिए होती है उसी तरीके से दीनी और रूहानी एतबार से भी आपको कुव्वत दरकार होती है जिसके जरिए से आप एक काम को कर सकते हैं। ठीक है। तो उस कुव्वत के एतबार से मैंने आपकी खिदमत में एक चीज की वही फजर और कुरान फजर। और इन चीजों का ख्याल रखिए कि अपने अतराफ में जो भी महरूम है जो बच्चे तालीम से महरूम है उनकी तालीम का इंतजाम करें और खास तौर से यकीम और बेवाओं क्योंकि पैगंबर अकरम की जो वसीयत है उसके ये खास जो है
मदद करने के लिए किसी का करें जब करते किसी की मदद तो वो हम तो करते हैं देखकर हालात होकर जाहिर देखकर सब कुछ और कुछ होता है मगर वो हमारे साथ कुछ नहीं करता है।
इससे बहस नहीं इसमें बात ये है इसमें दो चीजें हैं। पहली बात ये है कि मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पैसे देते हैं बल्कि मदद करने का मतलब ये है कि आप उसको अच्छा इंसान बनने में मदद करें आप उसको बुराई से दूर होने में मदद करें ये होती है मदद। ये थोड़ी कि पैसे देके जान छुड़ा ली। इन्हें आवाज अहर साहब एक जुमला मुझे याद आता है वो सदके को इस सदके को उन्होंने इसी तरीके से डिफाइन किया था कि जब आपने एक फकीर को देखा उसकी हालत ज़ार पे नजर की तो उसकी हालत को देखकर आपके दिल में एक तकलीफ पैदा हुई आपने अपनी जेब से पैसा निकाल के उसको दे दी इसलिए नहीं कि उसकी मदद हो, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर जो तकलीफ पैदा हुई थी वो खत्म हो जाए। अगर आप उसकी मदद से दिलचस्पी रखते होते तो वो काम करते कि जिससे उसकी हालत में बेहतरी आती। ये है सर, हाँ ये मदद
तबीयत
की तो वो कहते
हैं।
और इसमें सबसे बड़ी बात देखें अर्ज करने की ये है कि हमारा किरदार जो है ना वो असर करता है उस वक्त। कब तक जैसे आप कह रहे हैं ना कि इससे कब तक कोई बचेगा, अगर किरदार की खुशबू मौजूद हो तो कब तक कोई इससे मुतासर नहीं होगा। और वही जुमला जो मैं पहले भी कभी कह चुका हूँ कि शहीद बता रही है ऐसी चीज को बयान किया है कि हमारी हालत क्या है कि हमारे पास मुश्क बेहतरीन खुशबू मौजूद है लेकिन हमने उस पर मोहर लगा के बंद करके रखा है और हम सारी दुनिया से इस पर लड़ते फिरते हैं कि मेरे पास बेहतरीन खुशबू है लेकिन उस खुशबू का जो बोतल है उसे ढकना उठा के वो सुनाते नहीं दुनिया के सामने उसको रखते नहीं। इस पर तो लड़ने को तैयार है कि सबसे अच्छी खुशबू मेरे पास है। तो ये मेरी गुजारिश आपकी कि हम अगर 20-25 आदमी भी ना एक दिन जमे के साथ किस किस्म के रस्तों पर चल पड़ेंगे इंशाल्लाह तो आप यकीन करें कि माशरे में एक मानवीय को मिलाने की तरह शुरू होगी इंशाल्लाह। मैं जिस चीज को आगे बढ़ाना चाह रहा था आखिर में जल्दी जल्दी पिछली दफा जिस बात का तस्करा किया था वो ये जिससे मुतमस्सिक होने का हम दावा करते हैं उसके कुछ मखसूस असरात हैं। अगर हम इस बात को जानना और पहचानना चाहें कि हमें विलायत अहले बैत हासिल है या नहीं तो उन असरात से उसका पता चलेगा। और उसके लिए अलामत के तौर पर मैंने जनाब सैयदा की ज़ियारत आपके सामने पड़ी थी जो आज ही के दिन इतवार के दिन पड़ी जाती है और उसके आखिरी जुमले ये हैं कि मैं तकरार इसलिए कर रहा हूँ कि उसको जहन में बैठा रहा कि हम वनाहनो लके औलिया हूं कि हम आपके लिए औलिया हैं यानी हम आपसे रिश्ता कुर्बत चाहते हैं और इस विलायत के लिए हम करते क्या है मुफद्दिकून कि हम आपकी तस्दीक करते हैं और तस्दीक आपको अच्छी तरह पता है कि सिर्फ जबान से नहीं होती बल्कि जब तक फिक्र और अमल भी हमाहम ना हो उस वक्त तक तस्दीक गाजर ही रहती है झूठी रहती है। जो कुछ आपके वालिदे गिरामी पर नाजिल हुआ जो कुछ उनके वसी पर वसी को अता किया गया हम उसके सामने मुस्लिम हैं सर तस्लीम खम करने वाले हैं वनहनो नस्अलु का और हम सवाल करते हैं अल्लाहुम्मा कि ऐ खुदा इन कुन्ना मुफद्दिकीन लहुम कि अगर हम वाकई इनकी तस्दीक करने वाले हैं इसमें सच्चे हैं अंतुलहकना बेतस्दीकना बिदरजतिल आलिया तो इस तस्दीक के जरिए से हमें दर्जे आलिया से मुलहक कर दे यानी अहले बैत के अथार के वली होना जो कुछ खुदा ने उनको अता किया है उसकी तस्दीक करना अपनी नियत और अमल से वो इंसान के लिए क्या चीज फराहम करता है मुहैया करता है दर्जे आलिया से मुलहक हो जाना लेनोबशरा अनफुसना ताकि हम खुद अपने नफूस को बशारत दे सकें खुशखबरी दे सकें बेअन्ना पक्वहुर्ना बेविलायतिहिम कि बेशक हम इनकी विलायत के जरिए से ताहिर हो गए। ये विलायत अहले बैत का सर कि विलायत अहले बैत अगर अहले बैत के जो मारिफ हैं जो कुछ अहले बैत के पास है अगर इंसान उसकी तस्दीक करने के काबिल हो जाए तो खुदा की बारगाह में दराजात आलिया उसके लिए मैसर और अगर अहले बैत की विलायत उसको हासिल हो जाए तो ये इंसान के नफ्स की तहारत का सबब ये फर्क। तो अब खुदा ने हर जगह क्या किया है हर चीज के लिए निशानियां रख दी यानी इस बात पर किसी को लड़ने की जरूरत नहीं आप कहेंगे मेरे पास विलायत अहले बैत है दूसरा क्या नहीं اس پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف ان علامتوں سے اس کو پہچانے کہ جس کے پاس ولایت اہل بیت موجود ہوتی ہے اس کا نفس پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، جس کے پاس ولایت اہل بیت موجود ہوتی ہے وہ ان کے معارف کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے درجات عالیہ کا حامل ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جب ہم سلمان اور ابو ذر اور مرداد اور میسم اور اس قسم کے افراد کو دیکھتے ہیں تو بالکل یہی چیز نظر آتی ہے کہ اہل بیت کی ولایت کے ذریعے سے ان کے نفوس کی طہارت اور پاکیزگی اور اہل بیت کی تصدیق کے ذریعے سے درجات عالیہ سے الحاق. تو اب اگر ہمیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے لیے میسر ہیں تو اب آپ خوش ہو جائیں گے، جیسے خود اس زیارت میں ہے کہ بشارت دیجیے اپنے نفس کو کہ ہم آپ کی ولایت کے ذریعے سے پاک ہو گئے. اور اگر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف الفاظ ہیں اور اس کی حقیقت سے محروم. جی
آپ نے جو ولایت خدا کے بارے میں فرمایا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ سرپرستی کا رشتہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا نظام ہے اور سرپرست ہے.
جی میں اس کی تھوڑی سی تصریح کر دوں کہ ولایت خدا کے حوالے سے میں نے کئی چیزیں بیان کی اور ان فیکٹ چار اس کی جگہ میں بیان کی تھیں کہ ابتدا میں نصرت ہے، محبت ہے، بلکہ نصرت ہے، سرپرستی ہے، محبت ہے، اور انتہا میں اس ولایت کی ذرا کے ذریعے سے اس ولایت کی وجہ سے غیر خدا سے طہارت. یہ ہے ولایت خدا.
جی اچھا اب گزارش یہ ہے کہ جب ہم ولایت اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے کئی چیزیں ضرورت بھی آ جاتی ہیں کہ محبت بھی ہے اور سرپرستی بھی ہے. اور اب مجھے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ولایت خدا اور ولایت اہل بیت میں کس اس کو ہم کس طرح رکھیں گے؟
ولایت اہل بیت جو ہے وہ ولایت خدا کا ظل ہے، یعنی سایہ ہے، اس کا جلوہ ہے کہ ولایت خدا اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اس ولایت کو حاصل کر لیں. یعنی جیسے یوں کہہ لیجیے کہ ولایت خدا ایک لارجر اسپیئر ہے اور اس کے اندر ولایت اہل بیت موجود ہے، اور ولایت اہل بیت ولایت خدا سے ہٹ کے کوئی معنی نہیں رکھتی. یعنی اگر آپ ان دونوں کو برابر سے کوئی چیز، جیسے علامہ تمہارا سمجھ بہت عجیب بات لکھی ہے اسی رسالے ولایت میں، توحید صفاتی کے عنوان سے کہ ایک انسان صفات کے اعتبار سے موحد کر ہو جاتا ہے، جب وہ اس بات کو سمجھ لے، اس چیز کی معرفت حاصل کر لے کہ تمام کی تمام صفات صرف اللہ ہی کی ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ خدا کی صفات لامحدود ہے. اگر کوئی چیز لامحدود ہے تو وہ کسی دوسری چیز کی ایگزسٹنس کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتی. بات دلیل سمجھ میں آئی؟ یعنی جب آپ کہتے ہیں خدا کے لیے علیم ہونے کا فائدہ ہو جاتا ہے، خدا عالم ہے، خدا کا علم لامحدود ہے، جو چیز انفائنائٹ ہے وہ کسی اور چیز کے لیے موجود ہونے کی جگہ نہیں چھوڑتا. تو اب جتنی بھی چیزیں آپ کو خدا کے علم کے علاوہ نظر آ رہی ہیں، لازماً پہلاً آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ سب کے سب علم خدا میں فانی ہیں، یا اسی سے ہیں یا اس میں فانی ہیں. یعنی ادھر سے ادھر دیکھیں گے تو آپ کو اس میں فانی نظر آئیں گے، اور اگر ادھر سے ادھر دیکھیں گے تو سب اس کا جلوہ نظر آئیں گے. یہ جو کہتے ہیں ٹو فیسز آف ون کوائن، کہ اگر آپ مخلوق سے خالق کی طرف دیکھیں گے تو جتنے جلوے ہیں وہ سب جلوے حقیقی میں فانی ہیں، اور اگر ادھر سے نیچے دیکھیں گے تو جتنے جلوے ہیں وہ سب اس جلوے حقیقی کا مظہر ہے. یہ توحید ہے.
جی آپ نے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ یہ ایک بائی پاس کر لیتے ہیں کہ جو ہم کہیں سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں ریسٹرکشن آ رہی ہے تو ایک بائی پاس کر کے پھر جی ٹریک آؤٹ کر کے پھر ٹریک کرنے کی کوشش کریں. آگے چل کے آپ نے کہا کہ جتنے اصحاب تھے آئمہ کے ان کی آپ نے مثال کی دے دیکھیں گے وہ جی ٹریک نہیں ہوئے کبھی بھی، ٹھیک ہے. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ جو بیسک ڈفرینس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عرفانیت کی وجہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نہیں پتا میں کیا پڑھا، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے پتا ہی نہیں. اگر میں جب نماز کا تجربہ پڑھ کے پڑھتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے میں اللہ سے کلام کیا کرتا ہوں، जब मैं उसे कहता हूँ या करा तो वो या कर रस्ता ही, तो फिर मैं किसी का आगे आगे हाथ ही खिलाता। मैं जब उसे कहता हूँ सिराद मुस्तकीम, तो मुझे पता है कि यही ट्रैक यही जो है ना ये अल्लाह ही ने मुझे रखा। तो मुझे तो पता नहीं आपके पहले लेक्चर में पहली बार बैठे, तो मैंने तो अपने भाइयों से भी कहना होगा कि आपको डी ट्रैक होने से जो आपके शुरू के पार्ट में था कि डी ट्रैक नहीं होना चाहिए और डी ट्रैक से बचे, ये कि हम जब तक वो इरफानियत नहीं डेवलप करेंगे, एक अलग दुआ पढ़नी है, ज्यादा पढ़नी उर्दू में पढ़नी।
जी बिल्कुल, जिस हमारा असल में बुनियादी नुकता फिक्र यही है, यानी हमने जिस चीज को महवर बना के बात की है वो यही है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफी आगे के मनाजर की बात की है। वो अभी फिर वो जाना जाना थोड़ा सा, आप बहुत शुक्रिया आपने इस तरह तवज्जो कराया, लेकिन हमारा असल नुकता फिक्र यही है। तो ये बात वाजह हुई कि जो विलायत अहले बैत और विलायत खुदा के हवाले से बात करें कि जब हम खुदा की तरफ चलते हैं तो जाहिर है कि खुदा हमारे लिए कोई फिजिकली एग्जिस्टिंग मौजूद नहीं है, और इस मकाम पर इंसान काफी आगे जाने के बाद पहुंच पाता है कि वाकई खुदा को महसूस करे या खुदा को देखने के काबिल हो जाए। ये जो रिवायतों में जुमला मौजूद है, यानी ये मकाम हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए अभी बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको खुदा के जलवों से रुजू करना पड़ेगा, खुदा के जलवों से वापस्ता करना पड़ेगा, और वो आपको बलंद करेंगे यहां तक कि आप इस मकाम पे पहुंच जाएं कि ये इस जगह पहुंचना और उसके आगे की मनाजिर करते हैं। तो ये बात अपनी जगह बिल्कुल जिसे कहते हैं बहुत मक्कम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि विलायत अहले बैत या विलायत अंबिया विलायत खुदा का जलवा है, यह विलायत खुदा के तूल में है। जो उलमा एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हमारे आम जबान में भी है, सीरीज और पैरेलल के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कि पैरेलल का मतलब होता है कि दो चीजें बराबर बराबर एक दूसरे के हैं और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इसकी भी एक अलग हकीकत है, इसकी एक अलग हकीकत है, ऐसी कोई चीज नहीं है, यानी खुदा के पैरेलल में कुछ नहीं है। तो ये जो कुछ भी है वो खुदा के तूल में है और खुदा की वजह से है। तो चाहे वो विलायत अहले बैत हो, विलायत आइमा हो, इमामत हो, रिसालत हो, नबूवत हो, जो कुछ भी है वो खुदा की वजह से है और खुदा से तूल में। आज हम जिस चीज पर बात करना चाह रहे हैं वो ये, थोड़ा सा मुझे इस मजमून को समझाने के लिए फैलाना पड़ेगा कि
तो खुदा की विलायत तक पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो मरहमत जो है खुदा से ढूंढ ली जाती
है। इसके ऊपर भी अब वही मसला होता है, सारी बातें दोहरानी पड़ती है। इस मौजू को हम अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं, एक दो जुमला आपके लिए बयान कर दूं। इसका सीक्वेंस ये होता है कि जब तक इंसान खुदा का शऊर नहीं रखता, और ये शऊर हर इंसान के पास फितरी है, जब तक इंसान खुदा का शऊर नहीं रखता वो खुदा की किसी जलवे की तरफ मुतवज्जे नहीं हो सकता, समझ। और जब इंसान उस शऊर के साथ जो बिगर पिक्चर है उसका एहसास हम में से हर एक के पास होना लाजमी है, उस एहसास की वजह से आप अपने माहौल में तलाश करते हैं कि आपको कोई ऐसी चीज मिले जो आपको उस तक पहुंचा सके। तो हकीकतन जो मारिफत आपको अमल पे ले जा रही है, हकीकतन जो चीज आपको मोटिवेट कर रही है वो अड्रिक्ट नहीं कर सक रही है, जिस चीज की वजह से आप मोटिवेट हो रहे हैं वो खुदा की ही मारिफत है जिसका शुरू में आप एहसास रखते हैं। वही है ना, वो एहसास रखते हैं, पहले चीज यहां पर आई, उसने आपको आमादा किया कि आप उसी को तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब आपको उसकी निशानियां क्या मिली? उसकी निशानियां आपको मिली पैगंबर में, पैगंबर की शख्सियत को नहीं ढूंढ रहे थे आप उसको ढूंढ रहे थे, आप ढूंढ उसको रहते, उसकी अलामतें, उस तक पहुंचने के रास्ते जो अलामतें निशानी है वो आपको इसमें मिली पैगंबर में, आप पैगंबर से करीब हो गए। पैगंबर आपसे क्या कहता है, बंदगी खुदा की करो, इत्तबा मेरी करो। पैगंबर ये नहीं कहते कि मुझे पूछना शुरू करो, पैगंबर कहता है बंदगी उसकी जैसे तुम ढूंढ रहे थे, मैं उसी का निशान लेके बैठा, उसी का पता लेके बैठा, और उस तक कब पहुंचोगे जब मेरी इत्तबा करोगे। ये उसका तो पहले वो चीज वहां से इधर आती है और इधर से दोबारा वही जो दो कौसे बनती, दो कमाले जो बनती है वो इस तरीके से बनती। और वो इंसान के जो इब्तदाई मरहले पर इलाही शऊर नहीं रखता, वो कभी भी पैगंबर और इमाम से इस्तफादा कर नहीं सकता। तो इसी एतबार से जो हम बात कर रहे थे, इसी चीज को ही मैं आगे बढ़ाऊं जुमला के, आम तौर से जो अफराद इंसान है जिन्हें विलायत खुदा के अखबार से, विलायत खुदा के हवाले से, कि आम तौर से इंसानों के लिए कुरान की आयत ने यह कहा कि ये लोग वाकई हैं, हकायक से वाकई हैं। सूरह रोम की आयत नंबर 7, यालमूना वाहिरन मिनल हयात दुनिया वहुम फाइनल आखिरत गाफिलून। इन लोगों की क्या हालत है कि ये हयाती दुनिया के जाहिर का इल्म रखते हैं और आखिरत से वाकिफ हैं। खुदा की मार्फत और बाकी बात है, आखिरत जो इनकी जिंदगियों के साथ मिली हुई जो चीज है उस तक को नहीं पहचान पाते, उस तक को महसूस नहीं कर पाते। यानी रोजाना अपनी निगाहों के सामने इंसानों को दुनिया से अगले आलम में जाते हुए देखते हैं लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं कर पाते। सूरह नजम, वमा लहुम बिही मिन इल्म, इन यत्तबिउना इल्ला ज़न, ये लोग नहीं इत्तबा करते मगर अपनी गुमान की। वा इन्ना ज़न्ना ला युग़नी मिन अल-हक़्क़ शैया, और बेशक गुमान कभी भी हक से बेनियाज नहीं कर सकता। तो ये जो हक है, हक की मार्फत की अपनी कीमत है। आप कहें एक गुमान के तौर से एक चीज को लें जिसके बारे में आप उसको सच जानते नहीं, वो कभी भी हक की मार्फत से वो चीज आपको बेनियाज नहीं करती। पैगंबर अपने रुख को फिरा लो उन लोगों से कि जिन्होंने हमारे जिक्र से, हमारी याद से अपने मुंह को फिरा दिया है, उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वलम युरिद इल्ला हयात दुनिया, और वो लोग कि जिन्होंने हमारे जिक्र से अपने रुख को फिरा लिया वो नहीं इरादा रखते मगर सिर्फ हयात दुनिया का। ज़ालिका मबलगुहुम मिन अल-इल्म, और ये उनका मबलग इल्म है, इनकी इल्मियत और काबिलियत बस यही तक है कि दुनिया की हयात दुनिया से आगे किसी चीज को जानते पहचानते नहीं। तो अक्सरियत इंसान, अक्सरियत अफराद इसमें आता है कि यह नमूना बाहर मिला हयात दुनिया, कि दुनिया की जिंदगी के जाहिर के अलावा कुछ जानते हैं, और उनका मतलब इल्म इस हयात दुनियावी से आगे नहीं बढ़ता, और अपनी जिंदगियों में हक को छोड़कर गुमान की पैरवी करते हैं। यानी जिस राह पर हम चल रहे हैं हम खुद उसको कमा को नहीं जानते। कभी सुकून से बैठ के सोचें कि जिंदगी में हम डिसीशन मेकिंग जिन बुनियादों पर करते हैं क्या वो हकायक हैं या अजम्पशंस हैं, बहुत सारे या वो चीजें हैं कि जिनके बारे में हम खुद सही तरीके से नहीं पहचानते उसे। तो कुरान करीम में ज्यादातर इंसानों के बारे में जो उनकी क्वालिटी में उनकी वो ये बयान की। अब दूसरे मरहले पर आइए कि खुदा ने इंसानों के लिए क्या रखा है। ये इंसानों का रवैया कि वो दुनिया की जिंदगी से आगे नहीं देखते, उनका मबलग इल्म इतना है, हक तक नहीं आना चाहते, गुमान की बुनियाद पर जिंदगी गुजारते हैं। खुदा ने क्या रखा है हमारे लिए, क्या खुदा ने भी इंसानों को ऐसे ही छोड़ दिया, क्या खुदा ने कोई राह नहीं खोली। ایک دو احادیث آپ کے خدمت میں عرض کروں. امام باقر علیہ السلام ان حدیثنا حدیثنا فاعکم مصطفعکم وقرانہم اجرتم, کہ بے شک ہماری حدیث ہمارا قول کیا ہے, چار صفات اپنے اس کی بیان کی. فاعکم سوا عین بے, یعنی ایسی چیز ایسی سواری کے جس پر سوار ہونا آسان کام نہ ہو اسے کہتے ہیں ساعکم. یعنی اس کا مطلب ظاہری اعتبار سے کیا ہوا کہ جو ہماری حدیث ہے جو ہمارا قول ہے اس کا احاطہ کرنا اتنا آسان نہیں, اس کو مکمل طور سے سمجھنا کوئی آسان بات نہیں. مستفحن مستصعب, یعنی ایک چیز جس میں اتنی روب اور حیبت ہو کہ اگر آپ اس کے روبرو آئیں تو انسان بے اختیار ہو کے بھاگ پڑ جائے, رن پر اختیار ہے. یعنی اس کے اندر اتنا روب ہے, اس کے اندر حیبت ہے, اس کا کانٹینٹ ثقیل ہے کہ جو انسان کو حیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. وقوانم کہ جو مؤمنین کے تزکیے اور ان کی ذکاوت فہم کے لیے بہت مؤثر ہے. اجرتم اجرت یا مجرد کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو بالکل اوریجنل ہو, ان ٹچڈ ہو, یونیک ہو. اجرتم یعنی کہ جو ہمارا قوم ہے, جو ہمارا کلام ہے وہ یونیک ہے, ہمارے علاوہ اور کسی کی زبان سے ان معارف کو نہیں سمجھا. تو امام کیا فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کی حالت کیا ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کا انسان آسانی سے احاطہ کر سکے. اس کے اندر اتنا روب ہے, حیبت ہے, دبدبا ہے کہ اگر اس کو حاصل کر لو گے تو یہ صفت کو تمہیں میسر ہو جائے گی. اس کے اندر تمہاری فہم و ذکاوت اور تمہارے نفس کے تزکیے کا سامان موجود ہے. اجرتم اور یہ یونیک ہے اور اوریجنل ہے. یہ چیز لا یحتملہ ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان, اور ہمارے معارف کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا وہ مؤمن کہ جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لے لیا. یعنی ہمارے لیے کیا چیز میسر ہے, ائمہ کے ذریعے سے وہ معارف موجود ہیں کہ جن میں یہ چار صفات پائی جاتی ہیں, لیکن ان معارف تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم ملک مقرب یا نبی مرسل تو نہیں بن سکتے, یہ چیزیں تو ہمارے احاطہ امکان سے باہر. کیا بن سکتے ہیں؟ وہ بندہ مومن کہ جس کے قلب کا اللہ نے ایمان کے لیے امتحان لے لیا ہو, یا جس کے ایمان سے خدا مطمئن ہو گیا ہو. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان امرنا هو الحق وحق الحق, بے شک جو ہمارا امر ہے, اب یہ امر ایک اور چیز ہے, یعنی اہل بیت کا ایک قول اور حدیث ہے اور ایک اہل بیت کا امر ہے. امر سے مراد کے جو اہل بیت کے معاملات ہیں, یہ الگ بات کہ ہمارا امر کیا ہے, وہ حق ہے اور حق پہ حقیقت ہے. وہ ظاہر, وہ ظاہر ہے, وہ باطل ظاہر اور ظاہر کا باطن ہے, وہ باطل الباطن اور باطن کا اور باطن, یعنی ظاہر ہے ظاہر کا باطن اور باطن کا باطن. وہ سر, وہ سر ہے, وہ سر السر اس کا سر ہے, وہ سر المستصر